हरे कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 14। इसको पढ़ने से पहले हम पहले टेक्स्ट नंबर 13 को थोड़ा सा देखेंगे जो हमने कल पढ़ा था। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि। ज्ञेयम् मतलब जानने के योग्य, यत् तत् जो भी जानने के योग्य है, प्रवक्ष्यामि वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा। यज्ञात्वा अमृतम अश्नुते। यज्ञात्वा मतलब जिसे जानकर, अमृतम अश्नुते यानी कि अमृत का आस्वादन करोगे, आपको अमृतत्व का आस्वादन होगा। क्या करके? जब मैं आपको गेय के बारे में जानूंगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, गेय दो चीजें हैं, एक तो जो क्षेत्रज्ञ है और दूसरा वो जो क्षेत्रज्ञ का प्रधान क्षेत्रज्ञ है। यानी कि एक तो क्षेत्रज्ञ क्या है, ये आत्मा जो कि क्षेत्र को जानती है, और दूसरी क्या है, जो इन सारी शरीरों को जानता है, सारे क्षेत्रों को जानता है, यानी परमात्मा। ये दो चीजें ज्ञेय हैं। अब इनके बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो पहली लाइन में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनादि मत परम ब्रह्म। अनादि मतलब अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ उसकी दो क्वालिटीज है, एक तो वो अनादि है और दूसरा मत परम। मत परम बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द यहाँ पर आया है, इसका मतलब होता है मेरे अधीन। जो अभी मैं तुम्हें बता रहा हूँ जिस ब्रह्म के बारे में, देखो ब्रह्म आत्मा भी है और ब्रह्म आनंद ब्रह्म भी है, विज्ञान ब्रह्म भी है, लेकिन यहाँ पर जिस ब्रह्म की बात हो रही है उसकी दो क्वालिटीज है, एक तो अनादि है। अब अनादि दोनों ब्रह्म है, जो आनंद ब्रह्म है और विज्ञान ब्रह्म है, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों ही अनादि तो हैं, दोनों की कोई शुरुआत नहीं, लेकिन इनमें से क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, एक मत परम यानी कि एक भगवान श्री कृष्ण के अधीन है और दूसरा तो स्वतंत्र है क्योंकि वो स्वयं भगवान है। अब इस ब्रह्म की जहां जो यहाँ पर बात हो रही है वो क्या भगवान कह रहे हैं, अनादि मत परम ब्रह्म। ये जो ब्रह्म की बात कर रहा हूं वो अनादि तो है लेकिन वो मेरे अधीन है। न सत्तन्ना सदुच्यते, न सत यानी कारण उच्यते, कारण और कार्य का, इसका मतलब होता है भौतिक जगत के कार्यकलापों से परे है, उसको भौतिक जगत के कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं है, ये अनादि है और मेरे अधीन है। क्योंकि भौतिक जगत के सारे कार्यकलाप तो शरीर पर है ना, आत्मा तो इनसे सबसे परे है। तो इसके बारे में अब लास्ट वाला पैराग्राफ जिसमें कल थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी उसको हम वापस से देखते हैं, ठीक है। इसमें कहा गया, वैदिक साहित्य यानी श्वेता उपनिषद 3.16 में भी परमेश्वर को परमात्मा रूप में प्रधान क्षेत्रज्ञ प्रतिर गुणेश यानी कि शरीर के मुख्य ज्ञाता तथा प्रकृति के गुणों का स्वामी कहा गया। किसको? जो परमात्मा है। और अब परमात्मा को तो क्या कहा गया, प्रधान क्षेत्रज्ञ कहा गया, और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्वामी कहा गया ना, क्षेत्रज्ञ प्रति गुणेश यानी कि जितने भी गुणों हैं उनका स्वामी किसको, परमात्मा को। लेकिन यहाँ पर जो प्रमोट हो रहा है वो क्या है, अनादि मत परमम यानी कि वो मेरे अधीन है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ, स्मृति वचन है, आगे भी बताया कि इसी चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं, दास भूतो हरे हरे रैव नान्य सेवा कदाचन, यानी कि जो आत्मा है, जो जीव आत्मा है, वो सदैव भगवान की क्या रहती है, दास होती है, सेवा करती है। और इसी चीज को यहाँ पर भी बताया गया, आप प्लीज श्लोक नंबर 13 की पहले वर्ड को देखिए, अनादि मत परम ब्रह्म, यानी कि यहाँ पर भी बताया गया कि जो मत परम है, जो दास है, वो क्या है, वो आत्मा है। परमात्मा तो दास नहीं है, वो आत्मा ब्रह्म है, वो विज्ञान ब्रह्म है। और इसी की पुष्टि भगवान चैतन्य ने अपने शब्दों में की, चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अब दास क्या है, आत्मा दास है ना, तो यहाँ पर आत्मा को ही प्रमोट किया जा रहा है। अतएव इस श्लोक में ब्रह्म का जो वर्णन है वह आत्मा का है, यानी कि जो यहाँ पर ब्रह्म जिसकी बात की जा रही है, अनादि मत परम ब्रह्म यानी कि जो मेरे आदीन है, जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो स्वतंत्र नहीं है, है तो अनादि लेकिन आदीन है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस श्लोक में जो ब्रह्म का वर्णन है वह आत्मा का है, क्योंकि वो मत परमम है। और जब ब्रह्म शब्द जीव आत्मा के लिए व्यवहारित होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। यानी कि जब ये आनंद ब्रह्म क्या होता है कि जिसके पास आने के बाद आपको सच्चित आनंद का अनुभव हो, लेकिन जीव आत्मा तो अलग से तो पराधीन है, अलग से तो भगवान श्री कृष्ण के आधीन है, वो अलग से तो कभी भी किसी को ना खुद आनंद में रह सकती है और ना किसी को आनंद प्रोवाइड कर सकती है। आनंद ब्रह्म का मतलब होता है कृष्ण, आनंद ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा, और विज्ञान ब्रह्म का मतलब होता है जिसे ये ज्ञान हो जाए और वो आनंद ब्रह्म के सरेंडर हो जाए तो वो आनंद को है ना कर सकती है, आनंद हासिल कर सकती है। यहाँ पर वापिस पढ़ते तो यह समझना चाहिए, यानी कब, जब वह आत्मा का है और जब ब्रह्म शब्द जीव आत्मा के लिए व्यवहार होता है तो यह समझना चाहिए कि वह आनंद ब्रह्म ना होकर विज्ञान ब्रह्म है। आनंद ब्रह्म ही पर ब्रह्म भगवान है। अब आनंद ब्रह्म तो भगवान है, वो किसी का आधीन नहीं होता, लेकिन जिस जिस आत्मा, जिस ब्रह्म की यहाँ पर बात की गई है उसके लिए तो भगवान ने साफ वर्ड यूज किया है, अनादिमत परमम, वो तो मेरे आधीन है। अब जो नेक्स्ट श्लोक है ना उसमें आनंद ब्रह्म के बारे में बताया गया, ये दोनों भगवान श्री कृष्ण गेय के बारे में बता रहे हैं ना, तो दोनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजना श्लाघ्य चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रार्थना है कि श्री प्रभुपाद जी हमें अच्छे तरीके से समझने में हमारी सहायता करें, हमें आशीर्वाद दें और भगवान के शब्दों को हम समझ सकें। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 13 टेक्स्ट नंबर 14। इस श्लोक में परमात्मा का बड़े ही सुंदर तरीके से विवरण हुआ है। भगवान कहते हैं सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमामृत सर्वमा वृत्य तिष्ठति। सर्वतः पाणी, देखो सर्वतः मतलब हर जगह पर, पाणी कहते हैं हाथ को और पादम कहते हैं पैर को। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तत् सर्वतोक्षी, अक्ष किसको बोलते हैं, और इसके अलावा हर जगह पर क्या है, हर जगह पर। देखो शुरू में क्या कहा, सर्वतः पाणी पादम, हर जगह पर उसके हाथ है पैर है। तत् सर्वतक्षी शिरो, हर जगह पर, अक्षी मतलब आंख, शिरो मतलब सिर, और मुखम मतलब मुंह। सर्वत श्रुति मल्लोके, सर्वत मतलब हर जगह पर है, श्रुति मतलब कान जिसे हम श्रवण करते हैं ना, और सर्वम आवृत्य, सर्व हर जगह पर आवृत्य मतलब व्याप्त है, हर जगह पर है। देखो कितना यहाँ पर विभु वर्णन है भगवान का, परमात्मा का, कि वो हर जगह पर व्याप्त है और सर्व मावृत्य तिष्ठति, हर जगह पर वो व्यस्त है, हर जगह उससे भरी हुई है। कैसे है, इसको ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं कि उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह और उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अव्यस्थित है। अब यहाँ पर परमात्मा के बारे में बताते हैं कि वो ऐसा है, इतना उसका विभु शरीर है, हम हमारी इमेजिन से बाहर है कि हम कैसे समझ सकते हैं हर जगह उसके हाथ हो, हर जगह उसके पांव हो, हर जगह उसके कान हो, वो कैसे हर जगह सर्वत्र मतलब एक भी जगह ऐसी नहीं है जो परमात्मा से दूर हो, या कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर परमात्मा व्याप्त ना हो। ये हमारे समझने की बात नहीं है, हम हमारी इंद्रियों के द्वारा इसको समझ नहीं सकते हैं, हमारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम कैसे इसको समझें, लेकिन श्री प्रभुपाद जी की कृपा से हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रार्थना है कि श्री प्रभुपाद जी के वचनों को हमें समझने का भगवान आना हमारे ऊपर कृपा करें कि हम इनको समझ सकें, और श्री प्रभुपाद जी की कृपा हो कि हम भगवान श्री कृष्ण के वचनों को समझ सकें। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं जिस प्रकार सूर्य अपनी अनंत रश्मियों को विकिरण करके स्थित है, उसी प्रकार परमात्मा या भगवान भी है, कितना सुंदर बता रहे हैं। देखो जैसे सूरज एक जगह पे खड़ा होता है, लेकिन संसार की कौन सी जगह होती है जहाँ सुबह नहीं होती, जहाँ सूर्य की किरणें नहीं आती। उसी प्रकार भगवान के लिए श्रवपाल जी कितना अच्छा दृष्टांत उदाहरण देके इतना इजी समझा रहे हैं कि भगवान भी हैं एक जगह पर ही भले, लेकिन हर जगह पर उनकी वो व्याप्त हैं। वे अपने सर्वव्यापी रूप में स्थित रहते हैं परमात्मा या भगवान, और इनमें आदि शिक्षक ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक के सारे जीव स्थित हैं। हर जीव में भगवान श्री कृष्ण जो है ना स्थित, हर जीव के अंदर व्याप्त हैं। जैसे सूरज की किरणें हर जगह तक हैं, उसी तरह परमात्मा ब्रह्मा से लेकर छोटी सी चींटी तक हैं। उनके अनंत शिर, हाथ, पांव तथा नेत्र हैं और अनंत जीव हैं। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे जीव हैं और अनंत उनकी उनके हाथ पांव सब बहुत सारे हैं। ये सभी परमात्मा में ही स्थिर हैं। वो सब जो भी ये है ना, वो भगवान के अंदर ही स्थित है। अतएव परमात्मा सर्वव्यापक है, इसलिए भगवान हर जगह है। लेकिन परमात्मा ये नहीं कह सकता, सॉरी हरे कृष्णा, लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता कि उसके हाथ पांव तथा नेत्र चारों दिशाओं में है। यहाँ पर डिफरेंस बता रहे हैं कि देखो यहाँ पर क्या, हम पहले आत्मा के बारे में पढ़ा ना, अनादि मत परम, वो भी अनादि है लेकिन वो क्या है, भगवान के अधीन है। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान तो हर जगह है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर भगवान ना हो। लेकिन आत्मा ये नहीं कह सकता कि वो हर जगह पर है और उसके हाथ पांव तथा नेत्र सभी दिशाओं में है, यह संभव नहीं है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकते। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसरित है, यानी कि अगर वो ये सोचता है कि मैं भी परमात्मा की तरह हूँ और मेरा भी सारा ये फैला हुआ है, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा तो उसका ऐसा सोचना उल्टा है। यानी कि जब उसे ये रियलिटी पता चलेगी कि परमात्मा तो कोई और है और मैं तो उसके अधीन हूँ, मैं तो जीव आत्मा हूँ। देखो परमात्मा और जीव आत्मा में क्या फर्क है कि वो परमात्मा जो है वो विभू है और जीव अणु है। ये उनका डिफरेंस कभी भी खत्म नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जीव भी परमात्मा बन जाएगा। लेकिन कुछ लोग इस तरह बताते हैं ऐसा ज्ञान हो, लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये अज्ञान है, यह वह अज्ञान है। यदि वह अज्ञान के कारण यह सोचता है कि उसका ज्ञान कि उसे इसका ज्ञान नहीं है कि उसके हाथ तथा पैर चतुर्दिक प्रसारित हैं, किंतु समुचित ज्ञान होने पर वह ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि उसका ऐसा सोचना उल्टा हो जाएगा। इसका अर्थ यही होता है कि प्रकृति द्वारा बद्ध होने के कारण आत्मा परम नहीं है। अब देखो परम नहीं है, आत्मा आनंद ब्रह्म नहीं है, आत्मा क्या है, मत परम है, भगवान के अधीन है। क्यों? क्योंकि वो प्रकृति द्वारा बद्धित है, वो शरीर के अंदर मुक्त नहीं है, वो कैद है, वो प्रकृति के गुणों के अधीन है, इसलिए वो परम नहीं है। परमात्मा आत्मा से भिन्न है। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा की भिन्नता को, उनकी डिफरेंस को बताया गया। परमात्मा अपना हाथ असीम दूरी तक फैला सकता है। कैसे? कि देखो हम हमारी आत्मा जो है वो लिमिटेड है, लेकिन परमात्मा जो है वो कुछ भी कर सकता है, उसके बहुत सारे हाथ हैं, वो किधर तक भी पहुंचा सकता है, किंतु आत्मा ऐसा नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई उन्हें पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, श्रीमद् भगवद गीता 9.26, तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यदि भगवान दूर होते तो फिर इन वस्तुओं को वो कैसे स्वीकार कर पाते? जाहिर सी बात है, भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारी हर चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, तो मुझे दो में खा लूंगा, तो अगर वो मेरे पास नहीं है तो वो खाएंगे कैसे? तो यही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है। इसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि सर्वत्र
यत्र पाणिपादं तत् सर्वतोक्षी शिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति।
उसके हाथ हर जगह पर हैं, उसके पांव हर जगह पर हैं, उसके सिर हर जगह पर, उसके कान हर जगह पर हैं। इसीलिए तो वो हमारी हर प्रार्थना को सुन सकते हैं, इसीलिए तो वो हमें देखते हैं, इसीलिए तो हम उन्हें महसूस कर सकते हैं। इसीलिए अगर वो हर जगह नहीं होते तो कैसे खिलाते उनको, कैसे सुलाते, कैसे प्रेम करते। तो यहाँ पर अपने सर्वव्याप्त होने के बारे में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। यह भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, भगवान के अंदर ये पावर होना ही चाहिए। अगर भगवान हर जगह नहीं होते तो हम उन्हें हर जगह महसूस कैसे करते और हर जगह वो हमारी सहायता कैसे करते। यद्यपि वे पृथ्वी से बहुत दूर अपने धाम में रहते हैं। अब उनके रहने की जगह बता रहे हैं यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कि वो रियल में रहते नहीं है यहाँ पर, तो भी वे किसी के द्वारा अर्पित कोई भी वस्तु अपना हाथ फैलाकर ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उनके अंदर इतना पावर है कि वो हर जगह आकर अपने भक्तों के साथ प्रेम व्यवहार कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, उनकी बात को सुन सकते हैं, उनको रिप्लाई कर सकते हैं। हमारे अंदर भाव होना चाहिए बस, खाली इतना कि वो करते हैं, बाकी करते क्यों नहीं है, करते हैं, कितनों का सुना, कितनों का किया, हर कौन सी बात है जो नहीं सुनी उन्हें। तो यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वो किसी के द्वारा भी अर्पित की हुई सारी चीजें भी ग्रहण करते हैं, यही उनकी शक्तिमत्ता है और ये उनका पावर है। अब वो रहते कहाँ है, गोलोक वृंदावन धाम में, और करते क्या है, यहाँ पर संसार के सारे कार्य। इस चीज को ब्रह्म संहिता में 5.37 में कहा गया, बहुत अच्छे तरीके से ब्रह्मा जी बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, गोलोक एव निवसत्य खिलात्मभूतः, गोलोक एव निवसत्य, यानी कि एव का मतलब होता है ये तो निश्चित है कि वो कहाँ पर निवसत थे, वहां उनका निवास कहाँ पर है, गोलोक वृंदावन धाम में। और आगे बोला, गोलोक एव निवसत अखिलात्मभूत, अखिल मतलब पूरे जितने भी आत्मभूत हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, जितनी भी संसार की बाकी भूत हैं, जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी जगह है, वहां पर वे सर्वव्यापी हैं। यानी यद्यपि वे अपने दिव्य लोक में ही लीलारत रहते हैं, यानी कि प्रेम व्यवहार तो वहीं पर है, उनका रियल जो जगह है रहने की वो तो वहीं पर है, फिर भी अखिलात्मभूत यानी कि वो हर जगह पर, हर जगह सर्वव्यापी है। आत्मा ऐसा घोषित नहीं कर सकता, अब ये डिफरेंस है ना, आत्मा ऐसे नहीं कर सकता लेकिन कि वह सर्वव्याप्त है। वो सर्वव्याप्त भले वो अणु है ना, वो हर जगह पर हर टाइम पर ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर बताया जा रहा है आत्मा घोषित नहीं कर सकता कि ये परमात्मा की तरह, उसके भी हर जगह पर हाथ है, हर जगह पर पैर है, वो हर किसी के साथ प्रेम व्यवहार कर सकता है, वो भी परमात्मा है, वो ऐसा नहीं कह सकता। अतः इस श्लोक में आत्मा जीव नहीं है। अब इस श्लोक में क्या बताया गया, जो इस श्लोक में बताया गया वो जीव नहीं अपितु परमात्मा या भगवान का वर्णन किया गया। ये बात समझ में आ गई ना, कि पहले श्लोक में जो 13 में बताया था वो क्या बताया था, अनादिमत परम ब्रह्म, कि जो इस आत्मा के बारे में बताया जा रहा है, जो उसके बारे में क्या बताया था कि जिसे जानकर तुम अमृतत्व का स्वादन करो, कि यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है लेकिन मेरे आदिन है और भौतिक जगत के कार्यकलाप से परे। ये क्या थी, ये जो भगवान के आदिन थी वो आत्मा थी, वो विज्ञान ब्रह्म था। और यहाँ पर जो बताया गया वो क्या है, सर्वत्र पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षरो मुखम सर्वत्र श्रुति माल्लोके सर्वा सर्वमामृत्य तिष्ठति। यानी कि ये तो ऐसी, यहाँ पर तो एकदम हाईएस्ट चीज की बात हो रही है, उनके हाथ पांव आंखें सर हर जगह पर हैं, परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी आखिरी लाइन में इन दोनों के बारे में बता रहे हैं कि इस श्लोक में जो आत्मा बताया जा रहा है वो जीव नहीं है बल्कि आनंद ब्रह्म यानी कि परमात्मा या भगवान का वर्णन हुआ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।